राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 22 जुलाई 1993 को प्रातः लगभग 8 बजे बीकानेर में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण
ध्रुव जी महाराज वन में जाकर तपस्या करने लगे तो उनकी लगन बहुत तेज थी। ये लगन लगने में एक हृदय का प्रेम होता है और एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो जगत में कोई प्यार करने वाला नहीं रहता, प्यार रहती है भूख, तो उससे एक धक्का लगता है, उससे भी लगन लगती है। तो ध्रुव जी महाराज के प्यार में धक्का लगा। पिता है पूजनीय आदरणीय, उनकी गोद में जाने लगे तो उनसे मना कर दिया। और छोटी माँ ने बहुत तिरस्कार किया, अपमान किया कि तू राजा की गोद भरने के लायक नहीं है, तैने भजन नहीं किया है, अगर भजन किया होता तो मेरे जन्म लेता, तू अभागिन के उसके जन्मा है, इस वास्ते गोद भरने के लायक नहीं है तू। तो जो कोई एक आशा होती है वो आशा एकदम भंग होती है, उससे भी आदमी की एक जागृति होती है। तो एक जागृति हुई जो माँ के पास पहुंचे, माँ ने कहा कि बेटा ठीक कहा, तेरी छोटी माँ ने कही वो बात ठीक कही है, भजन था नहीं किया, नहीं मैंने ही नहीं किया, मैं बड़ी हूं तो भी मेरा निरादर है, अरे वह छोटी है तो इसे आदर है, सच्ची बात है। तो ध्रुव जी महाराज के बात जच गई कि भगवान का भजन करने से ठीक होता है, ये बात जच गई, माँ ने कह दी। माँ की बात बालक के असर करती है, क्योंकि बालक का विश्वास माँ पर पूरा होता है, जो कुछ उसे माँ ही होती है। तो वो वन में चले गए, उस बात को तो सब जानते ही हैं। नारद जी मिले, नारद जी ने कहा कि तू पीछा चल, तो वो नहीं लौटे। नारद जी ने बहुत विश्वास दिया कि राजा मेरी बात मानते हैं, तेरा और तेरी माँ का सब प्रबंध हम करवा देंगे, तुम पीछे चल। तो नारद जी ने ऐसे भी समझाया और भय भी दिखाया कि तू जंगल में जा रहा है, वहां माँ थोड़ी बैठी है, सिंह है, सांप है, बड़े बड़े भयंकर जंतु खा जाएंगे, और भोजन भी कौन देगा, प्यार भी कौन करेगा। तो भय भी दिखाया, लोभ भी दिखाया, तो भय का और लोभ का असर विलक्षण पड़ा उन पर। वे तो चाहते थे कि तू भी भजन में जाता है, बालक है, समझता नहीं है, बड़े बड़े ऋषि मुनि भजन स्मरण करते हुए शरीर छोड़ देते हैं तो भगवान की प्राप्ति नहीं होती, ऐसे काम में तू जा रहा है, भोला है, समझता नहीं, तो ऐसी बात कही। ध्रुव जी महाराज तो ध्रुव जी थे, ध्रुव पक्के थे, इस बात से उनकी बात का असर उल्टा पड़ा। क्या जब भगवान की तरफ चलने की तैयारी कर रहा हूँ, इसमें मेरा और माँ का प्रबंध होने की तैयारी हो गई, अगर भजन करूंगा तो कितना लाभ होगा, तो उसके जो पहले बात थी वो दृढ़ हो गई। अब पीछे नहीं लौटूंगा महाराज, परम प्याले से मिलो यही अस्फुट यही उत्तर दिया, मैं तो परम प्याले से मिलूंगा। तो नारद जी ने मेरी कृपा करके मंत्र भी बता दिया और तपस्या करने की बात भी कह दी। अब वहां यमुना जी किनारे वहां भजन करो, वो ध्रुवटीला आज भी ध्रुवटीला बोला जाता है, वो जगह मथुरा जी के पास, तो वहां भजन करने में लग गए। तो ऐसी तत्परता से तेजी से किया, मन इतना भगवान में लगा दिया जो दूसरी बात कोई याद नहीं है, वो माँ याद ही नहीं आई, ऐसा भगवान में तत्परता से लग गए। तो तत्परता से लगे तो कह रहे खट खटमास माही मिले साई अतल पाई धामिये, 6 महीनों के भीतर भीतर भगवान के दर्शन हो गए। तो भगवान के दर्शन कैसे हुए, वो पत्ते खा कर जाते थे और 3 वक्त स्नान करते थे और जैसे बताया उनकी तपस्या बड़ी कठिन तपस्या करी, और वो तपस्या ऊपर की थी, वो तो देखने में आती, सुनने में, करने में, वर्णन में भी आती है, परंतु भीतर की लगन थी असली। ये सब तरफ से निराश होता है तब भगवान में मन लगता है, और भगवान का प्रेम हो जाता है तो भगवान में लगता है। तो ये कुटुंब से निराश थे तो भगवान में मन लगा, तो प्राणायाम करने लगे तो भगवान में तल्लीन होकर के प्राणायाम किया तो त्रिलोकी का वायु बंद हो गया। देवताओं देव ऋषि मुनियों के इससे बड़े खलबली मची, ये तो मर जाएंगे हम, अब भजन स्मरण जप आदि करें, नित्य कर्म करें तो कैसे करें, वायु नहीं मिल रही है, श्वास बंद हो रहा है। तो देवताओं ने सबसे प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना सबने मिलकर करी कि महाराज ध्रुव को जगराली करो, नहीं तो ये मर जाएंगे लोग। भगवान भी मुस्कुराए, जो जानते हैं हम भगवान को करें प्रेरणा करें, तो भगवान ने 2 कमी देखी, एक तो भगवान को पता नहीं है और एक भगवान में दया नहीं है, कि भगवान मुस्कुराए इस वास्ते। तो देवताओं तो ज्यादा ही है, वहां दया भी ज्यादा है, सर्वज्ञता भी ज्यादा ही है, तो भगवान प्रकट हो गए। प्रकट हो गए ध्रुव जी को बड़ा आनंद आया, परंतु बहुत भोले भाले से अब मैं क्या बोलूं, तो बोल ना सके नहीं, तो भगवान ने अपना शंख है उस गाल के यूं छुआ दिया। छुआते ही भीतर से बात पैदा होगी, तो वे कहते हैं कि महाराज आपकी कृपा कितनी विलक्षण है, मेरे जो प्रसुप्त शक्ति थी सूती हुई उसको संजीवित कर दिया, अखिल शक्ति धर सदामना, आप तो अखिल शक्ति धरो तो अपने तेज से मेरी वाणी को सूती को आपने जगा दिया, तो उस वाणी से बोल पड़े। तो बात ये कहनी थी कि हम जो कोई शक्ति लेते हैं, कोई काम करते हैं, तो हम समझ लेते हैं कि हम काम करते हैं, हम स्तुति करते हैं, हम व्याख्यान देते हैं, हम पढ़ाते हैं, हम सिखाते हैं, हम समझाते हैं, ऐसा हमारे भाव पैदा होता है। तो ये भाव पैदा हो तो उसमें ताकत हम अपनी मानते हैं। ध्रुव जी महाराज ने ये अपने नहीं माना। बात मां सुसुप्ता सुसुप्ता सोती हुई मेरी वाणी को संजीवित जो जीवन कर जीवित कर दिया भगवान ने। तो ये जितनी शक्ति आती है वो भगवान से आती है। इस तरफ मनुष्य का ध्यान कम जाता है, वो अपनी समझता है कि मेरे में इतनी ताकत है, मैं इतना समझता हूँ, मेरी ये सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य होती है सब भगवान की, और भगवान का एक विलक्षण स्वभाव है। दुनिया में ऐसे स्वभाव वाले कम होते हैं जो भगवान के भक्त हैं और वही जगे हुए वही होते हैं, नहीं तो प्रसुप्ति रहते हैं। वो शक्ति को अपनी मान लेते हैं। तो भगवान का एक विलक्षण स्वभाव क्या है कि वो देते हैं परंतु अपने को जनाते नहीं। अच्छे पुरुष होते हैं वे भगवान के भाव को समझने वाले अथवा जानने वाले होते हैं, अथवा पूर्व जन्म के कारण से कोई विलक्षणता उसमें आती है संतों में। तो अच्छे श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वे सहायता करते हैं परंतु जनाते ही नहीं कि तुम्हारी सहायता मैंने की। तो भगवान इतनी चीज देते हैं परंतु जिसको देते हैं उसको अपनी ही मालूम होती है। जैसे भगवान ने ये कबू की करी करुणा नरदे ही देत ईश बिन हेतु सने ही। कभी भगवान कृपा करके इस जीव को मनुष्य शरीर देते हैं बिन हेतु सने ही, बिना कारण कृपा करने वाले, बिना कारण रहित कृपाल। तो दो बात हुई इसमें, ये बिन हेतु सनी तो स्वभाव है भगवान का, और कभी करी करुणा, कभी करुणा करके तो कृपालु कृपा करके देते हैं तो डबल कृपा होगी दुगुनी। मनुष्य शरीर देते हैं तो ये बात तो पुस्तक में लिखी है, परंतु मनुष्यों को अपने भाई बहन सोचो तो अपने को तो शरीर अपना ही मालूम देता कि हमारा ही है शरीर। तो शरीर जो हमारा मालूम देता है ये दाता की विलक्षणता है। हम अपना समझते हैं हमारा शरीर है, और ज्यादा ज्यादा पहुंचते तो बड़े भाग्य मानव अनुपावा, हम समझते हैं हमारा भाग्य अच्छा है ऐसा। तो भाग्य की तरफ भी वृत्ति कम जाती है, अपनी तरफ भी होते शरीर मेरा ही है, और बुद्धि वो मेरी है, चतुराई मेरी है, योग्यता मेरी है, ऐसा ही मालूम होता है। बिल्कुल ऐसा मालूम होता है हमारी योग्यता है, हमने इतनी पढ़ाई की है, इतना हमने ज्ञान उपार्जन किया है, मेरी कमाई हुई चीज है, ये बनाई हुई चीज है, ऐसा मानता है। तो शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, प्राणों को, सबको अपना मानता है। ये नहीं मानता है कि ये मिली हुई चीज है और बिछुड़ने वाली है। मिली हुई चीज बिछुड़ने वाली होती है, सदैव रहने वाली नहीं होती। तो ये सबको मालूम है कि मिली हुई अर बिछुड़ जाएगी। तो मिली हुई अर बिछुड़ जाएगी ये ज्ञान होने पर भी लोग मानते हैं कि मेरी है, मेरा कुटुंब है, मेरा धन है, मेरा मकान है, मेरी सामर्थ्य है, मेरा मान है, आदर है, सत्कार सब मेरा है, कुटुंब मेरा है, ऐसा मेरा मानता है। विलक्षण बात है, जो अपना ही मानता है ये पता ही नहीं रहता कि भी मेरा नहीं है, ये वृत्ति जाती ही नहीं। अगर आपका शरीर है, आपका मन है, आपकी बुद्धि है, आपका ही प्राण है, आपका ही सामर्थ्य है, तो शरीर आपका है तो शरीर को बीमार मत होने दो। तो क्या ये आप में सामर्थ्य है कि बीमार होने ही नहीं देंगे? और बीमार होने की शौक तो है नहीं, फिर बीमार हो जाता है तो आपकी सम्मति तो नहीं है उसमें, फिर बीमार क्यों हो जाता है? रोक दो उसको, और कम से कम मरने दो मत ना, कि मरने नहीं देंगे इसको, हमारा है। पर चलती है क्या अपने? जितने मरते हैं बिना चाहे मरते हैं प्राय, कोई कोई आपघात करता है वो भी बिना चाहे मरता है, कभी कभी आत्मघात से बच जाता है तो वो कहता है कि बड़ा दुख हुआ, बड़ा संताप, बड़ी जलन हुई, अब कैसे बचूं? फिर बच गया। तो मरने वाले जो आपघात करते हैं उनके भी अंत में बड़ा पश्चाताप होता है, जलन होती है, मैंने गजब कर दिया, क्या करूं अब फिर हाथ की बात रहती नहीं, मरना पड़ता है। तो अपने जान करके कौन मरेगा बताओ? सबसे ज्यादा भय मृत्यु का है, तो मृत्यु का भय लगता है। भय क्यों लगे? भाई आपका शरीर है तो अपनी चीज है, मर्जियां रखें, मर्जियां दे जाने दें, और रखना और जाना हमारे हाथ है। इसके सिवाय जब हमारा शरीर है तो शरीर को चाहे जैसे बना लें। आपका काला स्वरूप है, थोड़ा सा गौर बना लो, क्या हाथ की बात नहीं। एक अंगुली टूट जाए तो वो रबर की लगा लो, कैसे ऊपर ये चीज तो नहीं आती ऐसी, तुम एक अंगुली चली जाए तो नहीं आ रही, तो पूरा इतना बड़ा थैला चला जाएगा हाथ में, रख लोगे आप? तो ये अपने में सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य न होते हुए भी भीतर में अपनी बात जची हुई कि मेरा शरीर है, मेरी बुद्धि है, मेरी योग्यता है, मैं इतना चतुर हूं, मैं इतना समझदार हूं, मैं ऐसी पंचायती कर देता हूं ठीक ठीक तरह से, दूध का दूध और पानी का पानी, ऐसा फसार साफ कर देता हूं, ऐसी मेरे में बुद्धि है, लकवा मार जाए तो कुछ नहीं, याद नहीं रहती बात। हाथ हाथ में नहीं रहता, हाथ जिस हाथ से सब काम करते हैं उस हाथ के लिए भी दूसरा हाथ चाहिए, यो तो क्या कर सकते हैं हम? मनुष्य शक्ति क्या है? अभिमान करता है, मैं ऐसा करता हूं ऐसा करता हूं, इतना जानता हूं, इतना समझता हूं, परंतु कर कुछ नहीं सकता। तो ऐसी दशा में ये अभिमान करता है कि मेरा है। तो ध्रुव जी महाराज की बात याद आ गई कि वो जो स्तुति करने लगते, तो स्तुति करने लगते हैं तो कहते हैं कि जो अखंड शक्ति धरा है, जो परमात्मा संपूर्ण शक्तियों का धारण करने वाले हैं, वो मेरी बुद्धि को, मेरी बुद्धि को जागृत कर दी, मेरी वाणी को जागृत कर दी। तो उनको पता था कि मैं कुछ कर नहीं सकता, शंख छुआया तो उससे बात होने से उनको मालूम हुआ। अरे अपने आप बोलते तो ये बात मालूम नहीं होती, हमारे सामने कोई कहे, कोई पूछे तो हम उत्तर दे देते हैं, तो ये बात मालूम ही नहीं होती कि भगवान कोई शक्ति देते हैं हमारे को, उनसे देते हैं। तो ये क्या है? ये एक तरह की कृतज्ञता है, किए हुए उपकार को न मानना कृतज्ञता है। परंतु भगवान की ऐसी शक्ति विलक्षण, ऐसा एक स्वभाव विलक्षण है, जो देता है देने वाले को, अपनी बात जनाते ही नहीं, उसको मालूम ही नहीं देती कि ये बात भगवान से मिली है। कब हो कि कर करुणा नर दे ही देत इस दिन हेतु सने ही, ओ प्रभु देते हैं, परंतु मालूम होता है कि तो ये थे मेरा ही है शरीर, धन मेरा है, घर मेरा है, जितनी संसार में चीजें हैं उनमें से जितनी चीजों को, वस्तुओं को, धन को, जमीन को, जायदाद को, जो आप अपनी मानते हैं, क्या अपना उन पर बस चलता है? ये भाई बहनों को सोचना है, समझना है ये बात, इस बात पर ध्यान देना है, क्या शरीर मेरा है, क्या इंद्रियां मेरी है, क्या प्राण मेरा है, चाहे जितने रखू नहीं तो नहीं रखू। आंख को कहते आंख मेरी है, तेरी आंख पर कांच क्यों चढ़ाया भाई, तुम्हारी है तो ठीक रहने दो, फिर जब दिखता है नहीं तो दूसरा कांच चढ़ा कर काम चलाते हैं। तो तेरे तो कम मत होने दे, क्यों कम होने देता है, तो बस नहीं चलता कुछ भी। मैं तो कभी कभी कहता हूं बड़ी आश्चर्य की बात, आपको बढ़िया भी नहीं लगेगी शायद, पेशाब बंद हो जाता है तो डॉक्टर कह महाराज पेशाब हो जाए, तू तो ऐसी मूछ लगा रही, यूं कर लूंगा मैं, यूं कर लूंगा, अब मूछिया कर ले, कितने की ताकत है तेरे, शक्ति तो यही है और कुछ है, अभिमान करता है ऐसा कर लो मैं ऐसा कर लू, तो शक्ति अपने मैं पोल निकलती है, फिर भी होश नहीं होता है, होश होश नहीं आता है, अपनी ईमानदार मेरी है, तुम्हारी शक्ति कितनी है विचार है, थूक नहीं सकता मैं, थूक पड़ जाता है, थूक नहीं सकता, ये तो अनुभव होता है ना, बीमारी आती है तो दूसरे बेचारे कपड़े से लेकर कब बाहर निकालते हैं, देखिए ताकत कितनी है अपनी, अपनी ताकत चलाओ, तो दूसरी बड़ी बड़ी बने दूसरे के थूक भी नहीं सकता, ये है अपनी हालत, मन इतने हालत होते हुए भी भगवान की दी हुई शक्ति का भगवान का न मान कर अपना ही बन बैठा, आप मालिक, आप स्वयं भी बन बैठा, जहां स्वयं मालिक बनता है वहां मालिक को भूल जाता है, ये कायदा है। बहनों माताएं देखती है, आप लोग भी जानते हो इन बातों को, बालक माँ के बिना रह नहीं सकता, माँ कहीं चली जाए तो रोने लग जाता है, माँ की गोदी में तब राजी होता है, नहीं तो रोता है, माँ को छोड़ नहीं सकता, कब तक, जब तक आप छोटा है और मेरी माँ है ऐसा मानता है तब तक, और जब बड़ा हो गया और विवाह हुआ और मेरी स्त्री है माना, माँ को भूल जाता है, मालिक बना वो अपने मालिक को भूला, तो इस तरह संसार में मालिक बनते ही परमात्मा रूपी मालिक को भूल जाते हैं, अब स्त्री आएगी, अब बच्चे हो गए, अब थोड़ी बात माँ याद रहे, अरे याद रहना दूर रही, माँ जी बूढ़ा हो गया, माँ जी को तो काशी जी भेज दो अपना भजन करे, समझे नौकर का पट बंद कर दो, अब माँ जी सुहती नहीं, जिस माँ के बिना रो पड़ता था, रोता था, रह नहीं सकता, माँ की गोद मिले तो राजी होता, नहीं तो रोता था, अब वही माँ है वही बेटा है, बन मालिक बन गया, धन का स्त्री का लड़का लड़की का बन गया मालिक, मालिक बना अपने मालिक को भूला, ऐसे दुनिया के लोग सब धन संपत्ति वैभव परिवार आदि के मालिक बन जाते हैं, राज्य आदि के मालिक बन जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, अन्याय करते नहीं चूकते, पाप करते नहीं चूकते, बस मैं ही जो कुन सर्वे सर्वा मैं ही हूं, तो भाई होश में रहना चाहिए, तुम्हारी नहीं है, मिली हुई है पिछड़ने वाली है, दोनों बातें मिलने पर भी सदा साथ रहे तो फिर कुछ भी अभिमान हो जाए, पर मिली हुई थोड़ी देर ले जाने वाली है, तो ले आए बीच में मिली थोड़ी सी दी हुई सहायता के रूप से, फिर वो छीनने वाली है, उसको लेकर के अभिमान करता है कि मेरी चीज है, मैं ही ऐसा हूं, मैं ही ऐसा हूं, जवानी आ जाती है तो बड़ा अभिमान आता है कि मैं जवान हूं, अरे भाई ये आने जाने वाली है चीज, रहने वाली नहीं है, बल मिला है तो बल भी आने जाने वाला है, अधिकार मिला है, कोई पद मिला है, ओहदा मिला है, तो वो भी आने जाने वाला है, मूल सब चीज ही मिली हुई है, बिछुड़ने वाली है, तो भाई बहनों को चाहिए कि अपनी सावधानी रखे कि भाई जितनी चीज मिली है आपको, शरीर मिला है, कुटुंब मिला है, रुपये पैसे मिले हैं, वस्तुएं मिली है, आदर सत्कार मान बढ़ाई के मिलता है और बिछुड़ जाता है, अपने हाथ की बात नहीं, हाथ की बात नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव होने पर भी ये हमारी ऐसा ही मानता है, बड़ी बात आश्चर्य की बात है, तो चेत होना चाहिए, होश आना चाहिए भाई ये चीज मिली हुई है, तो मिली हुई चार चीज है, तो चीज जितनी बढ़िया मिली है इतनी भगवान की विशेष कृपा है, तो जो अपने को मेरे जो कृपा माननी चाहिए भगवान की, कि भगवान ने जो कितनी कितनी चीज दी है, कैसा कुटुंब दिया है, कितनी योग्यता दी है, कितना धन दिया है, कितना अधिकार दिया है, कितना मान सत्कार दिया है। सदगुरु क्या कहे, संतों की वाणी से जो ज्ञान होता है वो ज्ञान महाराज पहले पता ही नहीं लगता। आपकी आप जाने दें, मेरे को तो ऐसा पता लगता है कि जब संतों से कुछ बातें मिलती है तो एक नई जागृति आती है, नई सूझ होती है, और वे बातें फिर पुस्तकों में मिल जाती है, शास्त्रों में वही बातें मिल जाती है। परंतु ऐसे हम पढ़ते हैं, पढ़ जाते हैं, गीता याद कर ली तो उन गीता के भाव को नहीं समझा, पाठ कर लेते हैं फिर भी नहीं समझे, और सत्संग के द्वारा समझते हैं तब पता लगा वो ऐसा अर्थ है गीता जी का, ऐसी गीता जी में बात है। तो वो सत्संग के द्वारा ये भूलें मिटती है। लोग कहते सत्संग से क्या फायदा होता है, अरे भाई भीतर की जो भूलें हैं, गलतियां हमारी है, बेसमझी है, वो मिटती है सत्संग से। पारुष पर्श कुधातु सुहाई, लोहा है वो सोना हो जाए, कितनी विलक्षण बात है। उसमें भी संतों ने कहा है कि लोहा को सोना बना दे पारस, परंतु सत्संग तो महात्मा बना दे। लोहे का सोना बना हुआ है, उस सोने में ये ताकत नहीं कि दूसरे लोहे को सोना बना दे, पर सत्संग जिसको मिल जाए, संत महात्मा मिल जाए, वे दूसरों को महात्मा बना दे, संत बना दे, और वे संत फिर दूसरे संत बना दे, ये तो पारसों की खान खुल जाती है। अगर शायद बातों को ठीक समझे, सत्संग के द्वारा इतनी बातें विलक्षण मिलती है कि जो रुपया खर्च करने के नहीं मिलते, रुपया देकर के चीजें कोई खरीदे तो नहीं खरीदी जाती, और सत्संग में मुफ्त में मिलती है। बड़ी अलौकिक अलौकिक बातें विलक्षण विलक्षण सूझ मिलती है। हमें तो भाई इस बात का थोड़ा पता लगा कि तो भगवान की दी हुई शक्ति है, तो कुछ चेत आया, कुछ होश आया, नहीं तो बेहोशी में चलते थे, अपने ही मानते थे ऐसा ही। पिता पता लगा कि तुम्हारी है तो तुम्हारे में ठीक तरह से बोध हो जाना चाहिए। हमारी बात ऐसी है, ऐसी विलक्षण शास्त्रों में बात मिलती है कि हमारे को ज्ञान हो गया, तो ज्ञान हो गया तो ज्ञान तुम्हारे को हो गया कि ये भी मिला हुआ है, तो भगवान ने आपको तत्व ज्ञान देने के, तत्व ज्ञान का अधिकारी बनाया है और तत्व ज्ञान दिया है। जिस तत्व ज्ञान से आप मुक्त हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं, वो ज्ञान भी भगवान की कृपा से होता है। परंतु भगवान इतने छिपे छिपे काम करते हैं कि उस भगवान की तरफ जीव की दृष्टि ही नहीं जाती कि ये भगवान की कृपा से हुआ है। वो अपना ही उद्योग समझता है, अपना ही पुरुषार्थ समझता है। और महाराज क्या बताऊं, शास्त्र में बात आती है शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त, कहते हैं ये शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य मुक्त है, ऐसा आत्मा का स्वरूप है, ऐसा स्वरूप है जो फिर शुद्ध बुद्ध मुक्त हो तो अशुद्ध और बंधन में क्यों पड़े भाई, बुद्ध क्यों नहीं हो, अज्ञानी कैसे हो गए, आप कहते तो भाई अज्ञान मत होने दो। सामर्थ्य से आदमी काम करता है तो मेरे में इतने सामर्थ्य सिद्ध हो, बलवान सुखी आद्यो विजनवान अस्मी, कौन सी मैं बात कहता, मैं ऐसा हूँ, मैं इतना बलवान हूँ, अभिजनवान अस्मी, मेरे इतने आदमी, एक हजार कहते हजार आदमी उठते मेरे सामने, इतने मेरे आदमी है, इतना मैं कुटुंब वाला हूँ, मेरे हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, ये अपने अपने माने जाते हैं, और अभिमान अभिमान कर तो कर लो भले, परंतु इनको लेकर के उस काम कर सकोगे सामर्थ्य नहीं है। संसार में मान आदर सत्कार पाने के लिए भगवान ने आपको बल दिया है, उसके सदुपयोग करने की बुद्धि दी है, शास्त्रों से संत महात्माओं से अपने काम करने की सामर्थ्य और विचार करने की सामर्थ्य आई है, उस सामर्थ्य को लेकर के काम करने में अभिमान अपना करता है कि मेरी सामर्थ्य है। तो सज्जनों ये बात बड़े ध्यान से सुनने की, समझने की और धारण करने की है, नहीं तो वृथा अभिमान होता है। अहं करोमि इति वृथा अभिमान, ये मैं करता हूँ ये वृथा अभिमान है, झूठा अभिमान है। तो इस अभिमान को दूर करने के लिए जो चेतावनी है वो भगवान की कृपा से मिलती है, मुफ्त में मिलती है, बिना दाव मिलती है, बिना कुछ कहे मिलती है। हमें तो कभी कभी ऐसी बातें स्मरण आती है तो पुस्तकों से बोध होता है, कुछ जागृति होती है कि सत्संग का मौका भी भगवान कृपा करके देते हैं। अपनी सावधानी से लाभ उठा तो बहुत उठा लेते हैं, परंतु देते हैं भगवान, बल से नहीं मिलते, अपनी बुद्धिमानी से नहीं मिलती, धन संपत्ति से ऐसी बात नहीं मिलती जो सत्संग से मिलती है। कितना विचित्र बात है, कितना विलक्षण वैचित्र है। दान पुण्य आदि किया जाए तो दान पुण्य में बड़ा पुण्य होता है, देते हैं वस्तुओं, देते हैं दान होता है, वो दान है। उन दान शब्द प्रधान दान बताएगा, अन्न दानम महादानम, दान देना अन्न का दान महान दान है, क्योंकि अन्न में प्राणी नाम प्राणा, अन्न से प्राण रहते हैं, तो अन्न देने वाला प्राण दे रहा है, ऐसी बात है। तो लिखा है अन्न दानम महादानम वन विद्या दानम ततो अधिकम, अन्न दान महादान है वन विद्या दान उससे बहुत अधिक है, क्यों अन्न तो एक बार दिया भोजन किया फिर भूख लग जाती है, अगर उसको विद्या सिखा देता तो उम्र भर कुटुंब का पालन कर लेता, खुद का पालन नहीं कुटुंब का पालन कर ले, ऐसी योग्यता गुरुजन तो दे देते हैं, विद्या दे देते हैं, तो वो विद्या देने वाला कितना बड़ा भारी पुण्य करने वाला है। ऐसे ही जो परमात्मा तत्व का ज्ञान है वो देने वाला कितना विचित्र है, कि जो बंधन से मुक्ति हो जाए, हजारों सैकड़ों लाखों लाखों आदमियों को आप भोजन कराते हो तो भी भूख लग जाती है, और तत्व ज्ञान हो जाए, मुक्ति हो जाए, तो फिर दुख कभी स्वप्न में भी होता ही नहीं, इतना एक आनंद सत्संग के द्वारा मिलता है, तो वो कितना बड़ा दान है। ये बात समझ में नहीं आती है जल्दी जल्दी, सत्संग के द्वारा आदमी का कितना सुधार होता है, कायापलट हो जाती है, कायापलट कैसा था कैसा आदमी हो जाता है। अब वो सत्संग का प्रभाव देखा तो कितना मिलता है, पर इनमें भी क्या होती है कि हम उस तत्व को पूरा ठीक तरह से समझते नहीं है। जैसे एक बालक को कहा जाए कि भाई ये बाल्टी भर दो, तो वो इतनी लगी हुई है टूटी लगी हुई है, उसने जब बाल्टी रख देता है वो खोल लेता बाल्टी भर जाती है, और कहाँ से आया कि इस कड़ में से आया, अभी नल खोला इस कड़ में से पानी आया, वो कल का डंडा तो इतना सा ही दिखता है, बाल्टी भर ली फिर भी पानी तो आ रहा है, अब इतने संदेश से कैसे पानी निकले, इतना बाल्टी लिए क्या बाल्टी मा जाएगी उसमें, इतना पानी छोटे से लीकते तो तरस आ गए, तो कि नहीं ये नहीं आए तो कहां से आता है, कि वो पाइप बड़ा उससे लगा हुआ है ये नाला, तो उस पाइप में से जो आता है खीर ठीक पाइप में से आया, फिर पूछे भाई पाइप में जल कहां से आया, जल ये उसमें इसमें कहां से आया, पाइप ने आया हो तो टंकी से आया है, बड़ी टंकी है उससे लगा हुआ जल है ठीक है, संतोष कर लेता है। अरे टंकी में कहां से आया, टंकी में कुएं से आया, बड़ी संगत कर दिया, अरे कुएं में कहां से आया, कुएं में कहां से आया जमीन से आया, कि जमीन में कहां से आया, अब जमीन में कहां से आया भाई, सोचने विचार करते हैं तो जमीन में जल चलता है आया है, अरे कहां से आया, कि जहां से जमीन आई वहां से आया, और कहां से आया, जहां से जमीन आई है तो जमीन कहां से आई, अब जमीन कहां से आई, वो तो जमीन कहां से आई है, तो है ही ऐसी, अरे है नहीं भैया, ये आई हुई है, ये भी आई है। तस्मात आत्मना आकाश संभूत आकाशात वायोर अग्नि अग्निर आप अध पृथ्वी, ऐसा उपनिषद में आता है। उस परमात्मा तत्व से आकाशात आकाश पैदा हुआ, अहंकार हुआ, अहंकार से आकाश हुआ, आकाश से वायु पैदा हुआ, वायु से तेज पैदा हुआ, तेज से जल पैदा हुआ, जल से पृथ्वी पैदा हुई, तो जल से पृथ्वी आकाश से सब पैदा हुआ, आकाश कहां से पैदा, वो परमात्मा से प्रकृति, प्रकृति कहां से परमात्मा से, तो सब चीज परमात्मा है, अंत में परमात्मा के अगर नहीं चलेगा, इंद्रिय भय परा अर्था हर्थे व्यस्त परम मन मन सस्तु पराधा परा आत्मा महत परम महान पर महत परम अभ्यक्तम अभ्यक्ता पुरुष पर पुरुषान्न पर किंचित साकाष्ठा परा गति वो परमात्मा तक जाते हैं ये इनसे ये श्रेष्ठ है इनसे ये श्रेष्ठ है इनसे ये है इनसे ये ये है तो सबके मूल में परमात्मा आता है। वेदों में उपनिषदों में वर्णन है ये कि सब से पुरुष पुरुष है पुरुषार्थ न पर है कैसे तो उससे पर आगे कोई नहीं है। रसोम समय जो बताया है तो पहले अपरा प्रकृति बताई भूमि आपो न लो वायु उसके बाद परा प्रकृति बताई जीवात्मा और संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं तो ये परा अपरा प्रकृति है ऐसे बता अहम कृष्ण से जगता प्रभाव प्रलय तथा भगवान कहते हैं मैं सबका प्रभाव और प्रलय हूँ उस परमात्मा से आगे कुछ नहीं है। अब परमात्मा से आई हुई चीज और शक्ति तो भाई छोटी और बड़ी जो ताकत आती है सब परमात्मा से आती है तो परमात्मा से इतनी अनंत शक्तियां आती है उसका पुण्य कितना भगवान को होगा। अब उस पुण्य को कोई करना चाहे लेना चाहे तो क्या करे तो भागवत में आया है कि यथा तरोर मूल शिषेचन तृप्यंति तस्कंद भुजो को शाखा और प्राणोपहारात यथेन्द्रियाणी तथा सर्वार्ण अच्युते जिया वृक्ष जल देने से वो जल वृक्ष को पैदा करता है और वृक्ष को पुष्ट करता है। वृक्ष का जो बड़ा तना है पेड़ है उस पेड़ को पुष्ट करता है पेड़ के ऊपर जो बड़े बड़े स्कंद है उनको करता है उनके ऊपर छोटी छोटी डाली है उसकी टहनी छोटी है उस छोटी में और छोटी है छोटी अगाड़ी पत्ते हैं फूल है और फल है तो मूल में जल डालने से संपूर्ण फल तक सबका सब वृक्ष हरा हो जाता है। जैसे मूल में दारायण से पूजा हो जाए ऐसे भागवत माया है तथा जो सर्वार्थन मच्युते जिया ऐसे भगवान का भजन करने से उसका चिंतन करने से दुनिया मात्र को पुष्टि पहुंचती है। अब इसका कितना पुण्य होगा सब दुनिया को सहारनपुर से पहुंचते। और दूसरा दृष्टांत दिया है प्राणों प्राणों को हराज जैसे प्राणों को यहाँ मुख में अन्न जल देते हैं उस देने से शरीर के सब अवयव जितने गए सब इंद्रियां जितने गए मन और बुद्धि जितने गए ये सब कोई पुष्टि पहुंचती है केवल यह अन्न आहार देने से प्रत्यक्ष बात है। ऐसे सबके मूल परमात्मा है तो परमात्मा का भजन करे परमात्मा में चित लगा दे तो उसके पुण्य जितना आप कोई दान पुण्य कर ही नहीं सकते। दुनिया मात्र को जहां से शक्ति मिलती है उस परमात्मा के मूल में चिंतन होकर हम वहां खड़े हो गए तो कितना बड़ा भारी पुण्य होता है कैसी विलक्षण शक्ति आती है वहां से तो महात्माओं में विलक्षण आ जाती है जिसमें तो गीता में यहां तक कह दिया इदि ज्ञान उपाश्रित्य मम साधन में आगता। यह गीता में जो ज्ञान बताया है इस ज्ञान को प्राप्त कर ले तो भगवान कहते हैं मम साधर्म मागता मेरी साधर्मता प्राप्त हो जाए। जैसे भगवान से दुनिया मात्र का उपकार होता है ऐसे संत महापुरुष जो तत्व को जान ले परमात्मा में स्थित हो जाए तो भगवान के साधर्मता जैसे मैं हूँ वैसा ही हूँ तस्मिन् तज्जने भेदा भवात उसमें भगत में और भगवान में भेद नहीं है एक हो जाते हैं उनके साथ। तो उन संत महात्माओं के द्वारा दुनिया का कितना उपकार होता है उनके जीने से ही मेरे को तो बड़ा भारी आश्चर्य आता है। रामायण का पाठ करते हैं तो मैंने देखा कलकत्ता जयपुर आदि में भी जो पाठ करते हैं तो लोग बहुत आते हैं। हम अपने विचार करें हमारी बुद्धि लगावे तो हम व्याख्यान देते हैं उसमें तो लोग बात समझते भी हैं बातें व्यवहार में भी आती है समझ में भी आती है। रामायण का पाठ करे तो उसमें क्या समझ में आता है कोई बात समझ में नहीं आती। परंतु गोस्वामी जी महाराज की वाणी है संतों की और वर्णन है भगवान का उसके द्वारा इतना लाभ होता है इतना लोग आकृष्ट होते हैं बूढ़े बड़े सज्जन और बूढ़ी माताएं उसे बैठी सुनती है, बड़े मस्त हो जाते हैं। पता नहीं चौपाई क्या कहते, चौपाई का पता नहीं, चौपाई का अर्थ का पता नहीं, पर धुनी में इतनी मस्ती आ जाती है जिसमें लोग आकृष्ट होते हैं। लाख लाख आदमियों से अधिक आदमी इकट्ठे होते कलकत्ता में पाठ, नवा पाठ में, व्याख्यान में तो नहीं आते। विचार करो, हम अपना विचार करके हम बड़े समझदार हैं, अच्छी बात कहते हैं, परंतु जितने गोस्वामी जी महाराज की वाणी में और भगवान के चरित्र में, भगवान की लीला में कितना विलक्षण है और कितनी शांति मिलती है। दौड़ दौड़ कर लोग आते हैं और सुनते हैं, आनंद लेते हैं, तो भगवत संबंधी बातों में कितना आनंद है। उस भगवान कोई लग जाए तो उसके समान उपकार कोई कर ही नहीं सकता, किसी की ताकत ही नहीं कि उतना दान पुण्य से तीर्थ व्रत से अपना उपकार कर ले, दुनिया का हित कर ले, केवल उसमें लग जाए। इसमें लोक संग्रह में वापिस संपर्शन कर तुम रसी, भगवान ने अर्जुन को कहा तू लोक संग्रह देखे तो भी तुम्हें युद्ध करना चाहिए, कर्तव्य कर्म तेरे को आ गया, यज्ञ आचरती श्रेष्ठ देवे तेरोना, श्रेष्ठ पुरुष माने जाते हैं, उसका दुनिया में असर पड़ता है, वे जो जो करते हैं वैसे दुनिया करती है, वे जो कह देते हैं दुनिया उसके अनुसार चलती है। तो कितना विलक्षण है इस बात में, कितना इसका उपकार है, कितना इतना हित है, सज्जनों इस तरह दृष्टि नहीं जाती है। और सत्संग के द्वारा कितने आदमियों का कल जीवन सुधरता है, कितना व्यवहार सुधरता है, कितनी शांति मिलती है, अद्भुत बात, बड़ा भी आश्चर्य जैसी बात है। कोई कोई आदमी से बात होती है तो उसका पता लगता है। ऋषिकेश में सत्संग हो रहा था बढ़नी से, तो एक सज्जन आए थे, उस सत्संग से राजी हुए, वो बात कहते थे, उनसे बातें करी हुई, बात कहे कि मेरी लड़की थी, देखो किसी पिता का लड़के पर किसी लड़की पर एक विशेष स्नेह होता था, तो हमारी लड़की थी उस पर मेरा बहुत स्नेह, पुत्री पर अपनी कन्या पर, तो वो बहुत स्नेह था, वो मर गई तो व्याकुल हो गई, घबरा गए, जहाँ ज्यादा स्नेह होता है वो चीज चली जाती है तो दुर्दशा होती है, आदमी तो सीधी बात है, तो बहुत शोक था। तो वो आए तो सत्संग सुनी, सत्संग सुने के मेरे को बहुत शांति मिली, मेरी जलन मिट गई। अब बोलो, लड़की मर गई जिसका शोक चिंता इतना, जिसे व्याकुल होते हुए सत्संग किया, शोक मिट गया, चिंता मिट गई। अब भूख मिटने से कितनी शांति होती है और चिंता मिटने से कितनी शांति होती है। शोक मिट जाता है, चिंता मिट जाती है, घबराहट मिट जाती है इस सत्संग के द्वारा। तो ऐसे मैंने देखा है, ये केवल पुस्तकों में ही नहीं है, पुस्तकों में तो है ही, मन पुस्तकों की न माने तो भी ये बात प्रत्यक्ष में देखने में बात आती है। हमने देखा है, औरों को देखा है कि कितना उनको लाभ होता है, कितनी विचित्र शांति मिलती है, कितना संतोष मिलता है। आप रुपयों से वो शांति नहीं कर सकते, आप वस्तुओं से अन्न से आदि कितनी शांति नहीं दे सकते, जितनी भगवत संबंधी बातों से शांति मिलती है। और भगवत संबंधी बातों से उनको कितनी खुराक मिलती है, कितना जीवन मिलता है, कितनी शांति मिलती है। ऐसे सत्संग में लोग बाधा दे देते हैं, कई लड़कियां बेचारी जो मेरे साथ बात होती है तो कहती है हमारे आने नहीं देते, घर वाले आने नहीं देते, भाई मेरे को आने नहीं देता सत्संग में। पति नहीं आने देते सत्संग में, और वहां करें क्या, वहां कोई काम काज नहीं है, घर में कोई काम काज हो ऐसी बात नहीं है, कोई खास काम नहीं है, कोई सत्संग में क्यों जाते हो। अब उन्होंने देखा नहीं सत्संग तो कैसे कहे हुए, ऐसी ऐसी बातें मेरे सामने आती है, क्या बात है, नहीं सत्संग में नहीं जाना। उनकी बिचारी की तो कितनी हुए हत्या कर रहे हैं, कितना पाप कर रहे हैं, कितना अन्याय कर रहे हैं, कितने लाभ से लोगों को वंचित कर रहे हैं। जैसे लाभ देने से पुण्य होता है तो लाभ की आड़ देने से पाप कितना होता है, मेरी बात का शोक विचार ही नहीं है। उनको बाधा दे देते कि सत्संग में जाओ, अभी आप करके देखो तो सही। जब कोई विचार है वो सत्संग में जाता है तो आप भी दो चार दस दिन जाओ, आपको पता लगेगा। बीकानेर की बात है, एक लड़का जवान तो वो माँ को पहुंचा था सत्संग में, कुआं बिकाने की बात है, तो वो सत्संग में पहुंचा करके अब चला जाता, फिर लेने के लिए आ जाता, सत्संग उठने का समय होता तो माँ को आकर ले जाता था। मातृभक्ति उसे, माँ का बड़ा आदर बड़ा सत्कार करता था। तो एक दिन माँ ने कहा कि बेटा तू ही बैठ जा थोड़ी देर, तो माँ ने कह दिया बैठ गया। महाराज सत्संग में चस्का लग गया, छोड़ता ही नहीं, फिर मेरे से मिला, मेरे से बातें हुई, जब की पता लगा इस तरह से। कलकत्ते में एक सेठ के मुनि में रहते थे माहेश्वरी, तो वो माहेश्वरी मालिक थे, वही मुनि भी, तो वो सज्जन मालिक थे, वो कहता मुनि जी सत्संग में चलो, तो वो कहते थे मेरे काम बहुत है, लिखना पढ़ा रहता है, मेरे को समय नहीं मिलता। तो वो कई बार कहते थे, कई बार कहने पर नहीं आए, उनकी खुद की कही हुई बात कहता हूँ मुनि के, तो कई बार कहते, फिर देखा भी ये मालिक है, मैं काम धंधे की चिंता करता हूँ, ये चिंता करते ही नहीं, एक जाएगा तो खुद ही तो होगा ही उतनी देर। फिर भैया ज्यादा कहते तो चलो, आने लग गया तुम्हारा छूट रहेंगे, सत्य में आने लग गए। भाई हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, हित अनहित पशु और पक्षी भी जानते हैं, तो अपना हित कौन नहीं जानता है, जब समझ में आ जाती है तो उसमें लगते हैं आदमी, तो इतना बड़ा लाभ होता है और हमारा जीवन सुधरता है, विलक्षणता होती है। कई आदमियों को ला करके लोग लगाते हैं, सत्संग में लगते हैं और लग जाते हैं तो विलक्षणता आ जाती है। ऐसे आदमियों को मैं जानता हूँ जो सत्संग में जबरदस्ती लाए, इतने लग गए अपने स्वयं में आकृष्ट हो गए, खींच गए। तो ऐसे आप लोग प्रचार करो तो बड़ा भारी उपकार है, जैसे अन्नदान का उपकार है, जलदान का, जैसे दशा के महीने जल का बड़ा उपकार है, इन दोनों से ही बढ़कर अन्न जल से बढ़कर उपकार सत्संग में होता है। तो बात कह रहा था मैं, मेरी बात की तरफ ध्यान दें आप, मैं वो सत्संग इनकी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो जो लाभ होता है वो लाभ कहाँ से आता है। जैसे टूटी में से जल आया तो ठेठ आकाश से आया, आकाश में प्रकृति से आया, प्रकृति में पुरुष से आई शक्ति, परमात्मा से शक्ति आई है, तो जल ठेठ ठीक पहुंचो तो ठेठ परमात्मा तक पहुंचोगे। इस वास्ते आध्यात्मिक बातों से लाभ होता है तो वो लाभ भगवान से होता है, उस परमात्मा से होता है जो सच्चिदानंद आनंद रूप परमात्मा है, अक्षय आनंद है, निरतिशय आनंद है। सुख की सीमा करी है कि मनुष्य जन्म का कितना सुख है, उपनिषदों में वर्णन आया है कि मनुष्य का सुख है एक त्रिलोकी का राजा हो जाए, सबका राजा हो जाए, जिससे पहले पृथ्वी का राजा हो जाए, मात्र पृथ्वी का एक राजा है, जवान अवस्था है, स्त्री है, पुत्र है, धन है, कोई बैरी नहीं है, सबके सज्जन है, ऐसा सुख मिलता है तो मनुष्य का पूरा सुख उसको माना है, ये पूरा सुख हो गया, राज्य है, संपत्ति है, प्रभु है, शत्रु नहीं है, चिंता नहीं है, धन धान्य है, अकाल नहीं पड़ा है, सब प्रजा सुखी है, ऐसा भूमंडल मात्र का राजा होता है वो, तो मनुष्य का एक सुख माना कि मनुष्य का सुख है ये, उससे 100 गुना सुख है देवताओं का, ऐसे बताया 100 गुना एक ऐसे देवताओं का सुख है, देवताओं से 100 गुना सुख, देव के अधिपति खास अधिकारी देवता उनको है, अधिकार देवताओं से 100 गुना सुख इंद्र को है, इंद्र से 100 गुना सुख ब्रह्मा को है, ब्रह्मा से अंत सुख परमात्मा को है, और वह सुख परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष को है, ऐसा वर्णन आया है। अब कितनी विलक्षण बात है, कितना सुख है उसमें, और वो परमात्मा की प्राप्ति सत्संग के द्वारा बड़ी सुगमता से होती है, लगन अपनी हो जाए तो वह परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, जो कि ब्रह्मा से भी अधिक सुख, ब्रह्मलोक का सुख है, उसने भी अधिक सुख में बताया है, तो वो सुख हमारे को मिल सकता है, पर लोभ में रह गया, धन में ही रह गया, धन कमा तो सुख होगा, अरे भाई धन में तो सुख होगा परंतु धन तो यहीं रह जाएगा, और आप मर जाओगे, फूंक निकल जाएगी, कुछ काम नहीं आएगा ये, और अपने परमात्मा तो ये प्राप्त की है जो सदा के लिए शांति हो जाती, बड़ा भारी आनंद हो जाता है, और मुफ्त में चीज मिलती है, कैसी विलक्षण बात है। तो ये भगवान के भजन में, भगवान के तत्व के समझने में, उसमें जिसको रस आ जाता है वो छोड़ नहीं सकता, ऐसा विलक्षण उसको आनंद प्रत्यक्ष दिखता है या आता है, शांति मिलती है विलक्षणता से। शोक चिंता भय उद्वेग की तो वृत्ति निवृत्ति होती है, ये तो बहुत आदमियों को सैकड़ों हजारों आदमियों का अनुभव इस बात का कि सत्संग करने से न अशांति मिटती है, दुख मिटता है, संता मिटता है, शोक मिटता है, चिंता मिटती है। गंगा पापम शशि तापम, गंगा है वो पाप को दूर करती है, चंद्रमा होता है तो ताप को दूर करता है, और दीनता है वो कल्प तरु कल्प वृक्ष होता है, नीच जाओ तो कोई चीज रहती धन संपत्ति मिलता है। पापम तापम चैन्यंच हरित साधु समागम सत्संग में पाप ताप दरिद्रता सब दूर हो जाती है, विलक्षणता आती है आदमी में। तो वो सत्संग मिल जाए, सत्संग का समारोह, उसके द्वारा कितना लाभ होता है। तो ये लाभ मैं सत्संग का विषय नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था वो लाभ आता कहां से है, सबसे बढ़कर के परमात्मा है, वहां से ये आता है। तो परमात्मा कितना आनंद स्वरूप है और कितना वो दयालु है, कितना वो कृपालु है, देते हैं सब कुछ, देने वाला जनाता नहीं, एहसान नहीं करता। आपको थोड़ा पढ़ा दे तो पढ़ाने वाला एहसान करता है, व्यापार आपको बता दिया उससे पैदा हुई तो बताता देखो तुम मानते नहीं हो मैंने बताया ये आपको बाहर, ऐसा एहसान करता है यार। परमात्मा सब कुछ देते हैं, विलक्षण देते हैं, ज्ञान भी परमात्मा देते हैं, विवेक शक्ति भगवान ने दी है मुफ्त में, और उसका सदुपयोग तत्व ज्ञान हो जाता है। और संसार में जो दाता बना देते हैं भगवान, वो भगवान देते हैं, आप षणमुख हो जाओ वो बहुत विलक्षण बातें मिलेगी, अलौकिक अलौकिक विलक्षण मिलेगी, जो पढ़ाई से नहीं मिलती, बड़े उद्योग से नहीं मिलती, ऐसी ऐसी बातें भगवान के षणमुख होने से आती है। जैसे ध्रुव जी का मैंने दृष्टांत दिया, तो ध्रुव जी के बालक छोटे, पांच वर्ष के बालक अगर स्तुति करने लगे तो भगवान ने शंख छुआया महाराज, सोती हुई जागृत होगी सभी। तो ऐसे आप में हमारे में जो विलक्षण कुछ आती है वो उस परमात्मा से आती है। उसमें सन्मुख कोई ले लो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, भाई हो, बहन हो, स्त्री पुरुष कोई हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई हो, जो भगवान के सन्मुख होता है वह सभी। ऐसी विलक्षणता आती है, इतनी अलौकिकता आती है जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते। अब उस हम परमात्मा के सन्मुख हो जाए कितना काम होता है। लाखों करोड़ों आदमियों को आप भोजन दो तो उसका बड़ा भारी पुण्य होता है, परंतु एक आदमी को सन्मुख कर दो सत्संग के, भजन ध्यान के, इसमें लगा दो, उसका जो पुण्य होता है लाखों आदमी अरबों आदमियों को भोजन करने से उतना पुण्य नहीं होता। उसके न जाने कितने जन्म होते, कब कब तो जन्मता मरता, उसको भगवान ने सन्मुख कर दिया, तत्परता से इधर लग गया तो कितना काम हो गया, उसका काम शुरू हो गया, महाराज पासा ही पलट गया, रास्ता बदल गया। जैसे लाइन पर खड़ी है गाड़ी और पॉइंट बदल दिया जाए तो कहां जाने वाली वो कहां चली जाती है। इस तरह से भगवान के सत्संग, भगवान के सन्मुख कर दिया, अब सन्मुख की वो चीज मरने पर भी पूरा अभ्यास नहीं है। अगर जन्म होता उस जन्म में भी वो खींचेगा, उसका आकर्षण होगा परमात्मा की तरफ, तो वो संस्कार ऐसे विलक्षण पड़ते हैं जो कल्याण करके ही छोड़ते हैं। तो संस्कार मात्र पड़ जाना, इस बात को संत महात्मा और भगवान जानते हैं, दूसरे को पता नहीं इस बात का। अरे भाई जिसने व्यापार को जानता है, जिसने जो भोजन किया भोजन के रस को जानता है, जो फल जिसने खाया वो फल के रस को जानता है, दूसरे क्या जाने, दूसरे जान नहीं सकते, दूसरे में जानने की ताकत नहीं है। इस वास्ते सच्चे हृदय से सत्संग में भजन में आप लग जाओ। अब मैं कहां तक कहूं, इतनी विचित्र बात है भगवान की, अलौकिक बात है। उस भगवान के नाम का जप करो, आप पुकारो, आप पढ़े लिखे हो, अपट हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़े हो, भाई हो, बहन हो, किस वर्ण के हो, किस आश्रम के हो, संसार में बड़े नीच जो बोले जाते हैं, ऐसे भी भगवान को करे याद तो कितनी विलक्षणता आ जाती है, जीवन में अलौकिकता आ जाती है भगवान के सन्मुख होने से। तो भाइयों बहनों सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, उसका नाम लो, उसका चिंतन करो, जो कोई मन में दुख हो तो उसी से कहो, पुकारो उसको, तो निहाल हो जाओगे। नारायण नारायण नारायण, अब कहां तक।